महाबंध पुस्तक पहिली लेक्चर नंबर 8। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम सुथात्मने नमः, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोए सौवसाहुवं, भूतबलि प्रणीतं तं बंधतत्वप्रकाशकम्, महाधवल विख्यातम् महाबंधम नमाम्यहम्। आचार्य श्री भूतबलि भट्टारक प्रणित यह महाबंध नाम का सिद्धांत शास्त्र है। ये षटखंडगम का छठवां खंड है। इसके जो प्रथम प्रकृति बंध अधिकार है, ये पहले पुस्तक का विषय है और यहां हम प्रथम पुस्तक के पृष्ठ संख्या 31 पर आ गए, 31। अपना मन परे ज्ञान का विषय चल रहा था। वैसे है तो विषय आवरण यानी कर्मों का, परंतु ज्ञानावरण के भेद समझाते हुए ज्ञान के भेद समझाए उन्होंने। क्यों? क्योंकि जो ज्ञान के भेद है वही ज्ञानावरण के भी भेद है। इसलिए हमने मन परे ज्ञानावरण की बात हमने देखी थी। उसमें दो प्रकार है, एक रुजुमति मन परे ज्ञान और एक विपुलमति मन परे ज्ञान। तो उसमें वत्तमानाना में ऐसा शब्द आया था रुजुमति के लिए, उसके दो अर्थ किए, एक तो व्यक्त और दूसरा है वर्तमान। तो दोनों ही प्रकार से उन्होंने उसका वर्णन किया था कि व्यक्त मन वाले जीवों के जो उसके कुछ लाभ अलाभ सुख दुख इस संबंधी, जो पहले मैंने मन के द्वारा दूसरे के मन को पहले ग्रहण करते और उसके बाद वो किस पदार्थ संबंधी सोच रहा है उस पदार्थ को जानते हैं। यानी मन के द्वारा मन को ग्रहण करना ये तो मति ज्ञान के द्वारा हुआ और आगे उस पदार्थ संबंधी जो कुछ भूत भविष्य वर्तमान की बातें जानते हैं तो वो हो गया मन परिज्ञान के द्वारा। यह हम आते पेज नंबर 31 और ये जो दूसरा पैराग्राफ है विशेषार्थ के बाद, जो विपुलमति मन परे ज्ञान है वह 6 प्रकार का है। रुजुमति 3 प्रकार का बताया था, सरल मन, सरल वचन और सरल काय। यहाँ ये सरल को भी जानेंगे और वक्र को भी जानेंगे, इसलिए 6 प्रकार बताए। वह सरल मनोगत पदार्थ को जानता है, सरल वचनगत पदार्थ को जानता है, सरल कायगत पदार्थ को जानता है, फिर कुटिल मनोगत पदार्थ को जानता है, कुटिल वचनगत पदार्थ को जानता है और कुटिल कायगत पदार्थ को जानता है। यह वर्तमान जीव तथा अवर्तमान जीवों के, यानी जिसने भी नहीं सोचा है भविष्य में सोचेंगे, सामने जीव नहीं है कोई भविष्य में सोचने वाला है उसकी भी बात है, अथवा यानी उनके सामने वो जीव नहीं भी है, दूर कहीं पर भी है, फिर भी उसके मन की बात जानेंगे। व्यक्त मन वाले तथा अव्यक्त मन वाले जीवों के द्वारा चिंतित और अचिंतित सुख दुख लाभ अलाभ आदि को जानता है। पेज नंबर 31। इसका क्षेत्र जघन्य से योजन पृथक है। पहले हमने देखा था इसकी बात यानी रुजुमति की, उसका जघन्य से कोष पृथक्त्व और उत्कृष्ट से योजन पृथक्त्व, इनका जघन्य से योजन पृथक्त्व। और उत्कृष्ट से मानुषोत्तर पर्वत के अभ्यंतर जानता है, बाहर नहीं जानता। विशेषार्थ, मन परे ज्ञान का क्षेत्र 45 लाख योजन वर्तुलाकार न होकर विषकंभात्मक है, यानी चौकोर रूप है। अतएव मानुषोत्तर पर्वत के बाहर के कोण में स्थित विषयों को भी विपुलमति ज्ञान वाला जानता है। क्या कहना चाहते हैं? अकेले गोलाकार नहीं, क्योंकि इसका चौकोर क्षेत्र है, तो केवल मानुषोत्तर पर्वत तो ऐसा गोल है और इसकी उसी के डायमीटर का हम अगर वो करेंगे तो बाहर चार बाजू कोण रहते, तो वहां कोई तिर्यंच और देव हो तो उनके मत की भी बात वो जानेंगे, ये कहना चाहते हैं। तिर्यंच देव मनुष्य तो बाहर चौकोर में है ही नहीं, मैंने तिर्यंच और देव की बात की।
ये मनोपरिय ज्ञानी जो होते हैं वो मनुष्य और तिर्यंच के ही मन की बात
ना मनुष्य तिर्यंच और देव।
अच्छा
हाँ, तीनों के
नारकी के नहीं?
नारकी नहीं, क्योंकि वो देव पे नहीं है, क्योंकि मनुष्य लोक में है तो वो प्रतराकार जो कुछ चौकोन होगा थोड़ी जो हाइट तक उसको जानेंगे, मनुष्य लोक तक उसके भीतर पंचौकोर रूप लेना। और मनुष्य चढ़े हुए तो विद्याधर वगैरह तो पर्वतों पर गए हुए कहीं पर, उनको भी मन की बात जानेंगे, तो उसके क्षेत्र के भीतर है। काल की अपेक्षा, ये तो क्षेत्र की अपेक्षा बताया, कितना आगे पीछे तक जानते हैं तो जघन्य से 7-8 भव और उत्कृष्ट से असंख्यात भवों की गति अगति का प्ररूपण करता है, यानी असंख्यात भव आगे और पीछे तक क्यों जानेंगे। यहाँ 3 आंकड़ा लिखा है नीचे, दुगत तिग भवा हु अवरम सत्तट्ठ भवा हवंती उक्कसम अड़नव भवा हु अवरम असंख्येज्य व्यूल उक्कसम। यहाँ 8 और 9 दिखाए, देखो 7 और 8 के बदले 8 और 9 बताए हैं, क्योंकि हमने कल चर्चा की थी ना 7 और 8 कैसे हो सकते हैं। 8 है ना, वर्तमान को छोड़कर 8 हो गए और उसको पकड़ेंगे तो 9 हो गए। यहाँ अड़नव लिखा है, देखो अड़नव भवा, वर्तमान को छोड़ो, आने वाले 4 भी भूत के 4 8 हो गए, 8 और 9 ठीक है, 8 और 9 यानी हम उसके बारे में
7 और 8 है
नीचे फुटनोट में लास्ट लाइन एकदम अड़नव भवाहु अवरम, देखो 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 यहाँ नीचे से तीसरे दूसरी लाइन है ना, 3 पॉइंट था, दुगतिग भवा यानी दुगतिग ने वो तो रुजुमती का जगन्य और उसका अवर है ने अवरम सत्तट भवा हवंती उत्कृष्ट, अवर है ने वर है ने उत्कृष्ट, अवर है ने जगन्य ने रुजुमती का जघन्य है 2-3 भव और उत्कृष्ट है 7-8 भव। अब यहाँ अड़नव भवाहु अवरम, इसके 8 और 9 भव जघन्य है, असंख्यजम उवल उक्कसम और असंख्यात भवों तक विपुलमती उत्कृष्ट रूप से जानते आगे पीछे का। अभ्यंतर लिखा है इसलिए विशेषार्थ रूप से बताया, हाँ यह भी है। और हमने उसमें भी देखा था धवला में भी देखा था, वृत्ताकार का निषेध किया था उनको। हाँ अभ्यंतर लिखा है, परंतु उसमें ये समझना कि चौकोर रूप होना चाहिए, क्योंकि वो वृत्ताकार नहीं है चौकोर है, क्योंकि सेकंड पॉइंट देखो ना फुटनोट का, नरलोयतीय वयनम यानी नरलोक में ये वचन से विखंभ नियामयम न वट्टस्य, यानी मनुष्य लोक के भीतर तो कहा है पर उसमें क्या समझना है, वो विषकंभा रूप है, वट्ट ने वृत्त रूप ने गोलाकार रूप नहीं है। तम्मा तक घन पदरम मणपज्जव खेतम उद्दिठम, घन पदर ने प्रतर ने चौकोर स्क्वायर जिसको कहेंगे प्रतराकार, और घन प्रतराकार के कुछ तो हाइट तक तो मनुष्य लोक है ना, वहां तक तो जानेंगे। हाँ मेरु पर्वत तो मनुष्य लोक में जो है वहां तक उसके हाइट तक वो जानेंगे। देखो यहाँ विशेष हाँ कुछ बोल
यहाँ जो लिखा है ऊपर
ऊपर हाँ
विशेषार्थ में उसके ऊपर के लाइन में किधर गया, मैं पूछना था वो काल की बात कर, काल के
काल उसके विशेषात के नीचे है।
ये जगन्य से सात आठ भव,
हाँ
ये सात या आठ कैसे हो सकेंगे?
आठ यानी वर्तमान को छोड़ो,
हाँ,
और आगे पीछे को जोड़ लो।
तो वर्तमान में किसमें लेने का? ये जो सात आठ भव लिखे हैं,
यानी सात आठ भव का अर्थ होता है सात कैसे होगा वर्तमान का एक और आगे पीछे के तीन, आठ कैसे हो गए वर्तमान को छोड़ो आगे पीछे के चार चार। परंतु यहाँ नीचे फुटनोट में आठ और नौ लिखे वो ज्यादा संयुक्तिक लगता है। फुटनोट में देखो नीचे अड़नव भवाहु अवरम लास्ट लाइन असंख्य जम विवल उपकसम गोमरसार जीवकांड गाथा 456 है। और यही बात तब ये जो वृत्ताकार नहीं होता धवला में भी ये बात एम्फोटेकली बताई है, परंतु कहीं वो 22.5 लाख की त्रिज्या लेकर गोलाकार बताते हैं। अभी देखो विशेष नीचे जो विशेष लिखा है ना शंका, इस मनःपर्य ज्ञानावरण प्ररूपणा में मनःपर्य ज्ञान का निरूपण क्यों किया गया है? ज्ञान में कर्मत्व का समन्वय कैसे होगा? ज्ञान की बात बता रहे और यहाँ ज्ञानावरण की बात हम कैसे समझेंगे? समाधान, मनःपर्य ज्ञानावरण के द्वारा मनःपर्य ज्ञान आवृत होता है। यहाँ आवरण किए जाने वाले ज्ञान में आवरण अर्थात मनःपर्य ज्ञानावरणीय कर्म का उपचार किया गया है। इस प्रकार मनःपर्य ज्ञानावरण कर्म की प्ररूपणा की गई है। ये सब उन्होंने धवला टीका के आधार से ये सब निकाले हैं, क्योंकि ऊपर जो प्राकृत में भी है ना, क्योंकि मूल में भूतबली आचार्य ने टीका नहीं लिखी हुई, उन्होंने तो सूत्र लिखे हैं। ना काल देखो एट कितने टाइम तक तो जान लिया बस उसी में थोड़े आगे पीछे के छठे गुण स्थान में उपयोग लगाएंगे। हाँ उसका काल तो बहुत छोटा अंतर्मूर्त होगा, क्यों? सातवें में थोड़े वो मनःपर्य ज्ञान लगाएंगे, उपयोग रूप मनःपर्य छठे में होगा, क्योंकि दूसरे के मन को जान रहे मति ज्ञान से और फिर उसमें पदार्थ को जान रहे मनःपर्य से, तो बिल्कुल छठे का काल होगा वो, उसके भी बहुत छोटा, छठे में से भी छोटा। हाँ अभी हम आते हैं पेज नंबर 32 पर, केवल ज्ञानावरण प्ररूपणा। जो केवल ज्ञानावरणीय कर्म है वह एक प्रकार का है, उसकी प्ररूपणा की जाती है। जैसे मति ज्ञान में 336 भेद देखे, श्रुत ज्ञान में द्रव्य श्रुत की अपेक्षा 20-20 भेद देखे थे हमने, है ना, आपको याद होगा तो। और अभी मनःपर्य अवधि ज्ञान के तो कितने निदेशावधि परमावधि सर्वावधि, उसके भी द्रव्य क्षेत्र काल की अपेक्षा भाव की अपेक्षा भेद देखे। मनःपर्य ज्ञान भी दो मुख्य तो दो रूप से देखे ही थे। अब केवल ज्ञानावरण कहते एक ही प्रकार का है, उसकी प्ररूपणा की जाती है। जिनेन्द्र भगवान को केवल ज्ञान तथा केवल दर्शन की उपलब्धि हो चुकी है, वे स्वयं स्वर्गवासी देव असुर अर्थात भवनवासी, ये भवनवासी का एक प्रकार है असुर। भवनवासी कितने प्रकार के हैं प्रेरणा बेन? भवनवासी 10 प्रकार के, उसमें से एक असुर कुमार जाति के देव है। हाँ तो देव देवों को सुर कहते हैं, तो सुर अगेंस्ट असुर, पर अन्य भी भवनवासी समझना सब। तो देखो कि स्वर्गवासी देव, स्वर्गवासी ने वो वैमानिक स्वर्ग में रहने वाले, जहाँ मनुष्यों को कहते वो स्वर्गवासी हो गए वो नहीं देवों को क्या कहते होगे मरने पर? पृथ्वीवासी हो गए नहीं समझे मनुष्य और तिरियंचों में जन्मेंगे ने तो उनमें कहते होगे ये पृथ्वीवासी हो गए तो वे स्वयं स्वर्गवासी देव असुर अर्थात भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी देव तिरियंच तथा मनुष्य लोक की गति आगति चयन उपमाद बंध मोक्ष वृद्धि युति यानी जीवादि द्रव्यों का मिलना संयोग रूप जो कुछ हो गए अनुभाग तर्क पत्र छेदनादि कला मन जनित ज्ञान मानसिक विषय राज्यादि एवं महाव्रतादि का पालन करना रूप भुक्ति कृत परिसेवित यानी त्रिकाल में पंचेंद्रियों के द्वारा सेवित प्रतिसेवित आदि कर्म अरह अर्थात अनादि कर्म को सर्वलोक में सर्व जीवों के सर्व भावों को युगपत सम्यक प्रकार से जानते हैं। क्या क्या चयन होना इन्हें चित्त होना चयन मरण उपपाद चयन उपपाद बंध मोक्ष एक्चुअली इसमें बताते समय नारकी को क्यों छोड़ा स्वयं भगवान उपन्न नान दरिसी सदेव असुर मनुष्य यानी सबकी बात जानते हैं इतना ही बताना था नीचे विशेषार्थ केवली भगवान ये उसमें 1, 2, 3, 4 जो फुटनोट लिखे हैं ना जरा आप देख लेते हैं नीचे पहला फुटनोट थी वो तो एक नंबर असुर के लिए था सदेव असुर मनुष्य वगैरह असुराश्च भवनवासिना यानी असुर कुमार वो भवनवासी है देव असुर वचनम देशामर्षकम यानी जब सुर असुर कहेंगे तो असुर कहने से सभी उसमें गर्भित हो गए सुर में वो वैमानिक और असुर में वो सारे भवनत्रिक सभी आ जाएंगे देशामर्षक ने थोड़ा बताया तो उसमें सब गर्भित है इति ज्योतिषाम वंतराणाम तिरश्चाम ग्रहणम कर्तव्यम ज्योतिषाम के ज्योतिषाणाम शाणाम होना चाहिए ज्योतिष्याम या ज्योतिषी करेंगे तो ज्योतिष्याम होगा या ज्योतिषाणाम जो कुछ होगा यानी सबका ग्रहण होना चाहिए यानी सबको जानना चाहिए। दूसरा शब्द आया था दो नंबर का पॉइंट जुति के लिए युति उसका अर्थ है जीवादि दौवाणम मेलनम जुदी जीवादि द्रव्य यानी छह द्रव्यों का जो मिला पे नहीं वो संयोग जो कुछ हो जाता है उसका मिलना जो है वो युति है। तीसरा पॉइंट कहा था वो असुर ठीक है वो तो हो जाएगा पत्र छेद्यादि कला नाम पत्र छेद वगैरह जो कला है उसको पत्र छेद कहा था उन्होंने मनोजनितम नानम वा मनो उच्चदे मनोजनित ज्ञान को मन कहते हैं रज्जम रज्ज महव्यादि परिपालनम बुद्धि नाम पंच इंद्रिय ही तिविसु कालेसु जम सेविदम तम परिसेविदम नाम प्रतिसेवित किसको कहेंगे क्या कहेंगे वो सब उसकी एक एक की उन्होंने परिभाषा बताई वो अभी विषयार्थ में बताएंगे उसको ही पढ़ते हैं हम डायरेक्ट। केवली भगवान त्रिकाल अवच्छिन्न यानी त्रिकाल में जो भूत भविष्य वर्तमान के लोक अलोक संबंधी संपूर्ण गुण पर्यायों से समन्वित अनंत द्रव्यों को जानते हैं। लोकालोक में जितने अनंत द्रव्य है जो गुण पर्याय युक्त है यानी त्रिकाल के सभी पर्याय भी उसके अंदर आ गए उन सबको जानते हैं। ऐसा कोई गेय नहीं हो सकता जो केवली भगवान के ज्ञान का विषय न हो। और हमें तो क्या लगता है हमारे साइंटिस्ट ने इतना प्रूव किया तो कौन सा साइंटिस्ट क्या प्रूव करने वाला है वो उनको ज्ञान का विषय है कि नहीं कब कौन सा साइंटिस्ट क्या ढूंढेगा है ना। तो कहते ऐसा कोई गेय नहीं है जो केवली भगवान के ज्ञान का विषय न हो ऐसा क्यों कहा बोलो। कोई पदार्थ अननोन नहीं रह सकता वो सर्वज्ञ और सभी द्रव्य में प्रमेय तो गुण भी है, दोनों ओर से देखना है। वो सब जान लेते हैं, वो उनकी ज्ञान की महत्ता, और पदार्थ उसमें प्रति वो तो पदार्थ उनमें प्रमेय तो गुण है। हाँ, उसमें भी वो तो झलकने का भी उसमें गुण है। ज्ञान का धर्म ज्ञेय को जानना है, देखो आगे की बात आ गई, और ज्ञेय का धर्म है ज्ञान का विषय होना, क्या बात है ना। ज्ञान का धर्म ज्ञेय को जानना है और ज्ञेय का धर्म है ज्ञान का विषय होना, यानी ज्ञान में झलकना। इनमें विषय विषयी भाव संबंध है, विषयी यानी जानने वाला ज्ञान और विषय यानी वो ज्ञेय, जिसको हम ज्ञेय और ज्ञायक कहते हैं ना। जब मति और श्रुत ज्ञान के द्वारा भी यह जीव वर्तमान के सिवाय भूत तथा भविष्यत काल की बातों का परिज्ञान करता है, यानी भूत भविष्य की बातें तो हम मति श्रुत ज्ञान वाले भी जानते हैं, आकाश की ओर अरे अभी बारिश आने वाली है हम अनुमान भी लगा सकते हैं, या भविष्य की बातें भी ग्रहण कब होने वाला है क्या क्या है वो सभी पहले आगाही करते हैं ना आगे आने वाली बातें।
तो ये तो कल होने वाला जो चंद्र ग्रहण है वो सबसे बड़ा है ऐसा
आया है। अच्छा
भविष्य की बात,
भविष्य की बात तो जानते हैं, ग्रहण कहाँ लगेगा, कहाँ से दिखेगा, खग्रास कहाँ से दिखेगा, खंडग्रास कहाँ से, ये सब बातें हम आप भी तो जान सकते हैं। अब डॉक्टर के पास जाके पूछते हैं कब ठीक होगा, डॉक्टर को पता है ना, वो तो अनुमान लगाकर बता सकता है कि हाँ इसको 8 दिन लगेंगे। तो कहते मतिशुद्ध ज्ञान के द्वारा भी भूत भविष्य, भूत की बात तो जानते हैं हम, हमको याद आता है जो कुछ हम रिमेम्बर होते हैं, परिज्ञान करता है। तब केवली भगवान के द्वारा अतीत यानी बीत चुका है, अनागत यानी आने वाला, भविष्य और वर्तमान सभी पदार्थों का ग्रहण करना युक्ति युक्त ही है। ग्रहण करना यानी जानना, ये तो बस हम आप इतने अल्प ज्ञानी भी जानते हैं तो संपूर्ण ज्ञान वाले तो जानेंगे ही जानेंगे। प्रतिबंधक ज्ञानावरण कर्म के क्षय होने पर, निमित्त रूप से इसको कहीं जानते हैं कि ये प्रतिबंधक यानी नहीं होने देता, अभी वो नहीं रहा। आत्मा सकल पदार्थों का साक्षात्कार कर लेता है, सभी को जान लेता है। जैसे प्रदीप का प्रकाशन करना स्वभाव है, उसी प्रकार ज्ञान का भी स्वभाव स्व तथा पर का प्रकाशन करना है। बहुत अच्छा विशेषांक बताइए। यदि क्रम पूर्वक केवली भगवान अनंतानंत पदार्थों को जानते तो संपूर्ण पदार्थों का साक्षात्कार न हो पाता, क्योंकि अनंत काल व्यतीत होने पर भी पदार्थों की अनंत गणना अनंत ही रहती। समझ में आते ना, क्रम क्रम से जानते तो वो तो अनंत ही है, वो तो कभी समाप्त ही नहीं होते। आत्मा की असाधारण निर्मलता होने के कारण एक समय में ही सकल पदार्थों का ग्रहण होता है। जब ज्ञान एक समय में संपूर्ण जगत का या विश्व के तत्वों का बोध कर चुकता है यानी जान लेता है, तब आगे वह कार्यहीन हो जाएगा यह आशंका भी युक्त नहीं है। एक बार जान लिया तो अभी क्या रहा जानने को, तभी वो जानना बंद करेगा, उसने जान लिया ऐसा अगर कोई कहता है तो वो बात बराबर नहीं। कारण काल द्रव्य के निमित्त से तथा अगुरु लघु गुण के कारण, ये बाह्य निमित्त जो लिया काल द्रव्य और अंतरंग में उसकी अपनी जो शक्ति है अगुरु लघु गुण, इसके कारण समस्त वस्तुओं में क्षण क्षण में परिणमन यानी परिवर्तन होता है। क्षण क्षण कहने से हर समय, जो कल भविष्यत था वह आज वर्तमान बनकर आगे अतीत का रूप धारण करता है। यानी अभी हम कहेंगे जो आने वाला कल है 27 तारीख है, हम कहेंगे भविष्य में है। जब एक दिन बीत जाएगा तो हम कहेंगे 27 तारीख वर्तमान में है। और जब आगे और चले जाएंगे कहीं तो भूत में चली गई। ये तो बहुत स्थूल उदाहरण है। इस प्रकार परिवर्तन का चक्र सदा चलने के कारण ज्ञेय के परिणमन के अनुसार ज्ञान में भी परिणमन होता है। आप कहेंगे वो आने वाला सब कुछ जान लिया ना? हाँ, जान तो लिया है, परंतु वो परिणमन अभी हो रहा है कि हो चुका है कि आने वाला, इतना तो डिफरेंस पड़ेगा कि नहीं उसमें? क्या चाहिए? स्लो चाहिए?
मैंने फास्ट किया।
हेलो, ठीक है, एकोइंग हो रही। अच्छा, अब देखना जरा। जगत के जितने पदार्थ है उतनी ही केवल ज्ञान की शक्ति या मर्यादा नहीं है। क्या कहा? ऐसे कहने वाले हैं ना, ये तो अतिशयोक्ति है, ऐसा ही बता दिया है, वो तो एक ही लोकालोक है, तो एक ही को जानता है। तो कहते ऐसा नहीं है। हाँ, 32-33 वर। हाँ, अच्छा, उन्होंने एक्सप्लेनेशन सब अच्छा चल रहा है। देखो क्या कहते हैं, यानी एक लोकालोक है तो इतने ही उनकी जहाँ शक्ति नहीं है, मर्यादा नहीं है। केवल ज्ञान अनंत है यदि लोक, यानी लोकालोक कहना यहाँ पर, यानी विश्व जिसको कहेंगे। लोक कहने से अकेला लोकाकाश नहीं लेना, लोक यानी जिसमें छह द्रव्य पाए जाते हैं उसको लोक कहते हैं। उस अपेक्षा से पूरे विश्व को भी लोक कहने की पद्धति है, और अकेला लोकाकाश कहने तो उसके आगे आकाश शब्द लगाते हैं। तो लोक यानी विश्व यानी लोकालोक अनंत गुणित भी होता तो केवल ज्ञान सिंधु में वह बिंदु तुल्य समा जाता, यानी उसके अनंत वे भाग में पूरे सभी द्रव्यों को लोकालोक को जान लेते। इस केवल ज्ञान की प्राप्ति मुख्यता से ज्ञानावरण के क्षय से होती है, किंतु ज्ञानावरण के साथ दर्शनावरण तथा अंतराय का भी क्षय होता है। इन्हें अकेले ज्ञानावरण के क्षय में केवल ज्ञान हुआ ऐसा नहीं है, वो सब दर्शनावरण भी नहीं रहा, अंतराय भी नहीं रहा। इन तीन घातिया कर्मों के पूर्व मोह का क्षय होता है। मोह क्षय हुए बिना कैवल्य की उपलब्धि नहीं होती, यानी चारों ही घातों कर्मों का पूर्ण नाश हुए बिना केवल ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती। उज्जवल तथा उत्कृष्ट ज्ञानों की प्राप्ति के लिए मोह का निवारण होना आवश्यक है। जितना निर्दोष हो जाएगा उतना वैसा निरावरण हो जाता है। अनंत केवल ज्ञान के द्वारा अनंत जीव तथा अनंत आकाश इति का ग्रहण होने पर भी वे पदार्थ शांत नहीं होते। अनंत ज्ञान अनंत पदार्थ या पदार्थों को अनंत रूप से बताता है। इस कारण ज्ञेय और ज्ञान की अनंतता अबाधित रहती है। देखो देखो, यानी अभी पदार्थ समाप्त हुआ, उसके अनंतपना नहीं, तो ये तो ही नहीं, आकाश के प्रदेश समाप्त हुए, अभी और भी कुछ जाना। ज्ञान भी अनंत है और पदार्थ भी अनंत है। ज्ञेय की और ज्ञान की दोनों की अनंतता अबाधित रहती है। गुरुदेव भी कहते ना, ये वो अनादि को अनादि से और अनंत को अनंत प्रकार से इसी तरह से जानता है। यानी वो जान लिया, उन्होंने अनंत रूप से ही उसने जान लिया। ज्ञेय भी अनंत है और ज्ञान भी अनंत है। कोई कोई व्यक्ति सोचते हैं सर्वज्ञ का भाव सकल पदार्थों का अवबोध नहीं है, किंतु केवल आत्मा का ज्ञान प्राप्त व्यक्ति उपचार से सर्वज्ञ कहलाता है, वास्तव में सर्वज्ञ कोई नहीं है ऐसा कहने वाले हैं, परंतु ये बात बहुत गलत है। ऐसा क्यों कोई कहते हैं? क्योंकि अभी सर्वज्ञ को मानेंगे तो सब कुछ निश्चित है, तो क्रमबद्ध को मानना पड़ेगा। इसलिए सर्वज्ञ के जो उसका स्वरूप है उस पर ही लांछन लगा लेते तो। परंतु यह कहते, यह धारणा यानी यह मान्यता भ्रांतिपूर्ण है। जब ज्ञान क्षयोपशमिक अवस्था में रहता है तब वह अनेक पदार्थों का साक्षात्कार करता है, साक्षात्कार करने जान लेता है। जब वह ज्ञान क्षायिक अवस्था को प्राप्त करता है तब उस ज्ञान को न्यून बताकर आत्मा के ज्ञान रूप में सीमित सोचना असम्यक है। यानी आत्मा का ज्ञान सीमित है, मर्यादित है, ऐसा सोचना असम्यक है, यथार्थ नहीं है। हमने देखा है जो स्वभाव होता है उसमें वो असीम होता है, उसमें कोई मर्यादा नहीं होती। क्षायिक अवस्था में आबाधक कारण, आबाधक है ना, उसमें बाधा डालने वाला कारण दूर होने पर ज्ञान की वृद्धि स्वीकार न कर उसे न्यून मानना अयोग्य है। शंकाकार यह सोचे कि किस कारण से सुविकसित मतिशुत अवधि तथा मनपर्य रूप ज्ञान चतुष्टय क्षीण होकर कैवल्य काल में आत्मा के ज्ञान रूप में सीमित हो जाते हैं। आत्मा का स्वभाव ज्ञान है और प्रतिबंधक सामग्री के अभाव होने पर ऐसी कोई भी सामग्री नहीं है जो आत्मा की सर्वज्ञता को क्षति पहुंचा सके। अतः जिन शासन में आत्मा की सर्वज्ञता को काल्पनिक नहीं किंतु वास्तविक रूप में मान्यता प्रदान की गई है, यानी यह कल्पना नहीं है। ऐसे बड़े बड़े पंडित भी कहते नहीं, ये तो अतिशयोक्ति के लिए बता दिया, तो उन्होंने सर्वज्ञ का अभी निर्णय नहीं हुआ है तो अभी वो कैसे मिथ्या दृष्टि वो समझना। इस प्रकार केवल ज्ञानावरण कर्म की प्ररूप न हुई, केवल ज्ञान का स्वरूप बताकर केवल ज्ञानावरण की बात उन्होंने बता दी। अब ज्ञानावरण के बाद दर्शनावरणादि कर्म प्ररूपणा। दर्शनावरण कर्म की नौ प्रकृतियां हैं, याद है ना, कौन सी? चक्षु, चक्षु क्या? हाँ कितने हुए? तीन तीन हो, केवल दर्शन। देखो अगर सर्वघाती देशघाती करते हम तो क्या है, स्थान वृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, निद्रा प्रचला और केवल दर्शनावरण, ये छह तो सर्वघाती हो गए। और देशघाती हमने चक्षु दर्शनावरण, चक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, ये नौ हुए प्रकृति। अभी यहाँ पढ़ेंगे हम दर्शनावरण कर्म की नौ प्रकृतियां हैं, चक्षु अचक्षु अवधि और केवल दर्शनावरण, है ना, ये चार के आगे दर्शनावरण शब्द लगा लिया। निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला 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 तथा स्थान वृद्धि, यानी वो तो माइल से उन्होंने गाढ़ी निद्रा तक ले लिया। इतना कहकर उन्होंने इतने से ही उसकी चर्चा नहीं की है ज्यादा, इतना ही लिया, ठीक है। वेदनीय कर्म की साता तथा असाता ये दो प्रकृतियां हैं, मोहनी एक्चुअली ये जो ऊपर प्रकृति में लिखा है ना, पहले तो गाथाएं थी, ये बुद्धबली की रचना है, उसके पहले तो त्रुटित अंश था। अब यहाँ जो जो बीच में आ रहा है वर्णन वो तो बुद्धबली आचार्य की रचना है, और नीचे जो विशेषार्थ लिखा है वो संपादक महाराज ने लिखा है।
वो
हाँ, ये जो ऊपर लिखा है ना, देखो ऊपर 33 नंबर पर ऊपर 5 नंबर लिखा है, दंशनावरणीय से कम्मस नव पगदियो। ज्ञानावरण की उन्होंने 5 अलग अलग बताई थी, उसका विस्तार से वर्णन किया था, परंतु दर्शनावरण की 9 है कहकर छोड़ दिया था। और नीचे उसके नाम बताए, ऊपर तो केवल उसके है करके बताए, क्योंकि उन्होंने ये सब बता चुके हैं। जो प्रकृति समुद कीर्तन है ना, उसमें उत्तर प्रकृतियों के सब नाम बता चुके थे, मूल प्रकृतियों के उत्तर हमने पढ़ी भी थे, छठे पुस्तक के चुलिका में से हमने देखे थे, तो वहां पढ़े थे नाम उसके हमने, और आगे भी आने वाले हैं तब हम पढ़ेंगे उसको। वेदिनी कर्म की साता तथा असाता ये दो प्रकृतियां, यानी साता वेदनी और असाता वेदनी। मोहिनी कर्म की 28 प्रकृतियां हैं, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, संज्वलन क्रोध मान माया लोभ, सम्यक्त्व प्रकृति, सम्यक्त्व मिथ्यात्व यानी सम्यक मिथ्यात्व, मिथ्यात्व, ये दर्शन मुनि के तीन हो गए। हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसकवेद, यानी पहले उन्होंने उस 16 कषाय लिए, फिर ये दर्शन मुनि लिए और बाद में 9 कषाय लिए। आयु कर्म की 4, नरकायु मनुष्यायु तिर्यंचायु देवायु, ये आयु कर्म की 4 प्रकृतियां हैं। देखो भूतबली आचार्य ने पहले 5 खंडों में तो इसकी चर्चा पहले आ ही चुकी थी, बंध स्वामित्व विचय है और खुद्दा बंध है, उसमें तो बहुत विस्तार से चर्चा, इसलिए दोबारा पूरा का रिपीट नहीं किया है, शॉर्ट में बता दिया। नाम कर्म की 42 बंध प्रकृतियां हैं, बंध प्रकृतियां ने पिंड प्रकृतियां जिसको हम कहेंगे, गति जाति शरीर बंधन संघात संस्थान अंगोपांग, ये हमने सब देखे थे ना? सहनन 6 पुस्तक के हमने उसके आधार से देखे थे, प्रकृति समुत्कीर्तना में, वर्ण गंध रस स्पर्श आनुपूर्वी, अग्रु लघु उपघात परघात उच्छ्वास, आताप उद्योत विहाय गति, त्रस स्थावर बादर सूक्ष्म पर्याप्त पर्याप्त प्रत्येक साधारण, स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ सुभग दुर्भग सुस्वर दुस्वर आदेय अनादेय, यश कीर्ति अयश कीर्ति, निर्माण और तीर्थंकर। इस नाम कर्म में जो गति नाम का कर्म है उसके 4 भेद है, नरक गति, देव गति, मनुष्य गति, तिर्यंच गति। इस प्रकार जिस प्रकृति के जितने भेद है उतने भेद समझ लेना चाहिए, जैसे गति के 4 है, जाति के 5 है, शरीर बंधन संगात उसके अपने अपने 5-5 है, संस्थान 6, सहनन इस तरह से, अर्थात षटखंडागम वर्गणा खंडांतर्गत प्रकृति अनुयोग द्वार में जिस प्रकार कर्मों की उत्तर प्रकृतियों का निरूपण किया गया है, तदनुसार यहां भी जानना चाहिए। देखो विशेषार्थ, गति के सिवाय नाम कर्म की ये प्रकृतियां भी भेद युक्त है, एकेंद्रिय द्वेंद्रिय तीन्द्रिय चौइंद्रिय पंचेंद्रिय जाति, औदारिक वैक्रियक आहारक तेजस कारमान शरीर, औदारिकादि रूप यानी 5 के नाम 5, 5 बंधन तथा 5 संघात, समचतुरस्र न्यग्रोत परिमंडल कुब्ज स्वाति वामन और हुंडक ये 6 संस्थान, औदारिक शरीर अंगोपांग वैक्रिय शरीर अंगोपांग और आहारक शरीर अंगोपांग, वज्रषभ नाराज वज्र नाराज नाराज अर्ध नाराज कीलित और असंप्राप्ता सुपाटिका सहनन, शुक्ल कृष्ण नील पीत लाल वर्ण, सुगंध दुर्गंध खट्टा मीठा चिरपरा चिरपिरा लिखा है, हम चरपरा कहते ना, कटु कषायला रस, ठंडा गरम स्निग्ध रुक्ष हल्का भारी नरम कठोर रूप स्पर्श, ये रुक्ष में रू रसो चाहिए था, नरक तिरंच मनुष्य देव गति प्राय ज्ञान पूर्वी, ऊपर गति आ गए यहाँ प्राय ज्ञान पूर्वी आ गए, प्रशस्त अप्रशस्त विहाय गति, ये 65 उत्तर प्रकृतियां हैं जो पिंड रूप से 64 कही गई है, 65 उत्तर प्रकृति जो पिंड रूप से 14 कही गई है, 65 उत्तर भेद वाली पिंड प्रकृतियों में 28 भेद रहित अपिंड प्रकृतियों को जोड़ने पर नाम कर्म की 93 प्रकृतियां होती है। पिंड ने जो 1 से अधिक है ना उसकी बात यहां बताई। उच्च गोत्र नीच गोत्र के भेद से गोत्र कर्म 2 प्रकार का है, दान लाभ भोग उपभोग तथा वीर्यांतराय ये अंतराय की पांच प्रकृतियां हैं। सब प्रकृतियां 148 होती हैं। ये बंधन संघात और ये जो स्पर्श रस गंध वर्ण के टोटल 20 अगर हम गिनेंगे तो उसकी टोटल होती है 148। विशेष इन कर्म प्रकृतियों के विशेष भेद किए जाते हैं तो अनंत भेद हो जाते हैं। अरे असंख्यात होते हैं ना, अनंत कैसे लिए? हमने तो असंख्यात लोग ऐसा पढ़ा था, अभी उसके अनुभाग की अपेक्षा अनंत भेद हो गए। अनुभाग की अपेक्षा इस प्रकार प्रकृति समुत्कीर्तन समाप्त हुआ। प्रकृति समुत्कीर्तन का अर्थ है वो प्रकृति है बस इतना बताना उनका प्रयोजन है, वो फिर किसके होती है क्या होती है वो बात अलग आएगी। अभी अब इसको अलग पद्धति से अभी इसका वर्णन हो रहा है। देखिए अभी हम पढ़ते हैं यहाँ पर 34 पेज पर, सर्वबंध नो सर्वबंध प्ररूपणा। जो सर्वबंध तथा नो सर्वबंध है उसका ओघ अर्थात सामान्य और आदेश अर्थात विशेष से दो प्रकार निर्देश होता है। निर्देश यानी कथन, ओघ यानी इन जनरल कथन, और आदेश यानी गतियों में इंद्रियों में अलग अलग मार्गणाओं में। ओघ से पांच ज्ञानावरण तथा पांच अंतराय की प्रकृतियों का क्या सर्वबंध है या नो सर्वबंध है? देखो सर्व यानी जो कितने हमने देखे पांच, उसके पांच प्रकृतियां हैं तो पांचों बनती है या कम बनती है? दर्शनावरण में क्या कहेंगे? दर्शनावरण में सर्वबंध भी है जब नौ बनती है, और जब तीन की बंध विच्छित्ति हो जाती है तो छह भी बनती है, उसमें दो निद्रा प्रचला जाने पर चार भी बनती है, यानी उसमें सर्वबंध भी है और नौ सर्वबंध भी है। इसलिए पहले में पहले यहाँ क्या लिया उन्होंने, ज्ञानावरण और अंतराय पांचों का ही बंध है, उनमें कम बंधेगी ऐसा कभी नहीं होगा। तो इनका सर्वबंध होता है। विशेषार्थ ज्ञानावरण अथवा अंतराय के पांच भेदों में से अन्यतम का बंध होने पर शेष चार भेदों का नियम से बंध होता है। सर्व भेदों का बंध होने के कारण इनका सर्वबंध कहा गया है। फिर प्रश्न, दर्शनावरण कर्म का सर्वबंध है या नो सर्वबंध है? उत्तर, संपूर्ण प्रकृतियों के बंध करने वाले के सर्वबंध होता है। आप आपको बताना है कौन करेगा, कौन से गुणस्थान वाले करेंगे? पहले और दूसरे, दूसरे में बंध विच्छित है ना, स्थान बुद्धि निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला की बंध विच्छित है, दूसरे पहले और दूसरे दोनों को ही सर्वबंध होगा। ये पहले दो गुणस्थान वाले सर्व प्रकृतियों में से न्यून प्रकृतियों के बंध करने वाले के नौ सर्वबंध होता है, यानी कम बनता है। तो छह प्रकृति बांधने वाला कौन है? तीसरा गुण, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां और आठवें का पहला भाग, बाद में चार, दोनों को न्यून है, वो नौ सर्व कहेंगे। इन जनरल कहना है नौ सर्व। वेदनीय गोत्र तथा आयु कर्म में क्या सर्वबंध है या नौ सर्वबंध है? नौ सर्वबंध ही है ना, क्योंकि एक ही बंध उसी है प्रकृति या दो, दोनों का बंध होगा कभी एट ए टाइम? क्यों तेजस नहीं नहीं नहीं, वेदनीय एक ही कोई बंधेगी है प्रकृति या दो? आयु की चार है, अरे एक ही बंधेगी, उनका नौ सर्वबंध है। विशेषार्थ साता असाता वेदनीय उच्च नीच गोत्र इन युगलों में से किसी एक का बंध होगा तथा अन्य का अबंध होगा। इसी प्रकार आयु चतुष्टय में से अन्यतम का बंध होगा, शेष का अबंध होगा, एक ही आयु बंधेगी। इसलिए वेदनीय गोत्र तथा आयु का नौ सर्वबंध कहा है। देखो ज्ञानावरण अंतराय का मात्र सर्वबंध है, ये तीन का नौ सर्व ही है। अब दर्शनावरण में हाँ दोनों है, मोहनीय तथा ये तो हो गया था, हमने देखा मोहनी और नाम कर्म में क्या होगा, सबका एट अ टाइम, हाँ हाँ नो सर वो बंधे नहीं, उसमें भी अभी बंधने वाली तो मोहनी में बंधने वाली तो कितनी है 26, तो उसकी अपेक्षा से उसको कह सकते कि सर्व है, जब पूरा का बंद करने वाला है तो सर्व बंद है और न्यून का करता है तो नो सर्व बंद है, क्योंकि भले ना 25 का 25 का भी एक एट अ टाइम तो बंद होगा ही नहीं मोहनी में, और नाम कर्म में भी पूरे का कभी बंद नहीं होगा, तो दोनों में ही नो सर्व बंद ही होगा, पर एट अ टाइम कितने बनती है, एट अ टाइम सभी कषाय नहीं, नो कषाय सब नहीं बंधेगी ना, देखो यहाँ क्या ले भी? एवं मोहनीय नामानम, उसमें क्या बताया था पहले, सवादो पगदियो बंद मानस सव बंधो तदुण बंद मानस नो सव बंधो एवं मोहनीय नामानम, यानी सर्व का बंद करने वाले, परंतु सर्व का बंद कोई कभी करेगा ही नहीं, यानी इसमें नो सर्व बंद ही होगा, वो तो उन्होंने खोल कर बताया, ऊपर इतना ही लिखा था एवं मोहनीय नामानम, 26 का बंद कब होगा, मिथ्या दृष्टि को 22 का ही बंद है, हास्य रति या शोक रति होगा, युगल में से एक बंधेगा ना, यानी उन्होंने एवं कह दिया, यानी अगर पूरा बंद होता है तो सर्व बंद, नहीं होता तो न सर्व बंद, पर मोहनीय नाम में क्या होगा, नो सर्व ही होगा, सभी प्रकृति इकट्ठी कभी किसी को बंधेगी ही नहीं, हमने देखे ना नाम कर्म के बंध स्थान याद है, हाँ 23 वाला, 25 वाला, 26 वाला, 28, 29, 30 और 31 है ना, और एक ऐसी की थी बनती अकेली तब, यानी मोहनीय नाम में भी वो नो सर्व ही होगा, पूरे का कभी एट ए टाइम बंद नहीं होगा। अभी आदेश नीचे, आदेश से यह क्रम अनाहारक पर्यंत जानना चाहिए, अनाहारक पर्यंत यानी मार्गना याद है, गति में चार गतियों में अलग अलग बताएंगे, जाति जाति ने गति इंद्रिय काय वगैरह सब में मार्गनाओं में दे, विशेषता यह है कि अनुदिश से सर्वार्थ सिद्धि पर्यंत देवों में दर्शनावरण, यहां मोहनीय का लिखा है परंतु ऊपर दंशनावरण इतना ही लिखा है, मोहनीय का निकाल देना, एज इट इज मोहनीय का सर्वत्र नो सर्व ही होता है, दर्शनावरण नो सर्व बंद होता है, क्योंकि वो सारे सम्यक दृष्टि ही है, इसलिए उनमें अन्य देवों में मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि दोनों जहां तक है वहां तक दर्शनावरण का सर्व बंद भी है नो सर्व बंद भी है, पर ये अनुदिश अनुत्तर वाले तो चौथे गुण स्थान वाले ही है, तो उनमें तो नो सर्व बंद ही होगा, इस कथन को आगे भी अन्य मार्गनाओं में सर्व नो सर्व बंध का बीजभूत समझना, बीजभूत है ना, ये रूल सर्वत्र लगा लेना आप, यानी कौन कौन से में सर्व भी है नो सर्व भी, इस तरह से सोच कर उसको देखना है, अब उत्कृष्ट बंध अनुत्कृष्ट बंध प्ररूपना, ये किसमें लगा रहे हैं, हम प्रकृति में लगा रहे हैं, यहां ना स्थिति की बात है ना अनुभाग की, स्थिति का जब प्रकरण आएगा तो उससे उसको सर्व और नो सर्व अलग कहेंगे, पूरा उत्कृष्ट बंद करने वालों को सर्व स्थिति बंद कहेंगे, अब यहां प्रकृतियां कितनी बनती उसकी बात है केवल, तो उत्कृष्ट बंद अनुत्कृष्ट बंद प्ररूपना, इसी प्रकार उत्कृष्ट बंध तथा अनुत्कृष्ट बंध में भी जानना चाहिए। विशेष सर्वबंध नो सर्वबंध में ओग तथा आदेश से जैसा वर्णन किया गया है उसी प्रकार यहाँ भी जानना चाहिए। यानी जैसे दर्शनावरण में ही सर्व नो सर्व दोनों होते हैं, बाकी ज्ञान और अंतराय में तो सर्व ही होता है और बाकियों में तो सर्व नो सर्व ही होता है, मोहनीय में भी और उसमें भी सब में। दर्शनावरण की बात है, उसमें सर्व नो सर्व दोनों भेद होते हैं, इसलिए केवल दर्शनावरण की बात यहाँ उठाई। तो उत्कृष्ट में जहां नौ का होता है वहां उत्कृष्ट कहेंगे, जहां छह का होता है उसका अनुत्कृष्ट कहेंगे। यानी नंबर ऑफ प्रकृतियां कितनी बनती है उसके अनुसार, सभी बनती है कि नहीं बनती, ये उत्तर प्रकृतियों में लगा रहे हैं ना, मूल प्रकृतियों में लगा रहे तो सभी बनती है। आठों का बंध है तब कहेंगे सर्व बंध है या उत्कृष्ट बंध है, जब सात बनते तो नौ सर्व बंध कहेंगे। यहां तो हम उत्तर प्रकृतियों को ले रहे हैं। अब कहते हैं जगन्य बंध अजगन्य बंध प्ररूपना, जो जगन्य बंध तथा अजगन्य बंध है उसका ओग तथा आदेश से दो प्रकार से निर्देश करते हैं। पांच ज्ञानावरण पांच अंतराय का जगन्य बंध है या अजगन्य बंध है, तो कहते हैं अजगन्य बंध है। दर्शनावरण मोनिय तथा नाम कर्म का क्या जगन्य बंध है या अजगन्य बंध है, तो कहते हैं जगन्य बंध है तथा अजगन्य बंध है। उसमें से जितना पॉसिबल है, जैसे दर्शनावरण का चार है वो अजगन्य है, सॉरी जगन्य है, और छह का और नौ का अजगन्य कहेंगे। ऐसे ही मोहनीय में एक का बंध है वो जगन्य कहेंगे, यशकीर्ति बनती है सॉरी मोहनीय नहीं है, नाम कर्म में यशकीर्ति बनती है तो जगन्य कहेंगे। ऐसे ही मोहनीय में जो लोभ अकेला संज्वलन लोभ बन रहा है या लोभ और माया बन रहे, इस तरह से हमको सोचना है कितनी प्रकृतियां बनती है। यानी उसके जो बंध प्रकृति बंध स्थान है उसमें से मिनिमम का है उसको जगन्य कहेंगे, अदरवाइज अजगन्य कहेंगे। तो दर्शन और मोहनीय और नाम में जगन्य के अजगन्य है, तो जगन्य भी है और अजगन्य भी है। जैसे नाम कर्म में 23 वाला जो स्थान है ये एक वाला है वो जगन्य होगा और बाकी सब अजगन्य होगा। वेदनी आयु तथा गोत्र का क्या जगन्य बंध है अजगन्य बंध है, तो कहते जगन्य बंध है क्योंकि एक ही बनती है उसमें, उसमें दो भेद ही नहीं जगन्य अजगन्य के, जगन्य ही है। अनाहारक मार्गणा पर्यंत इसी प्रकार जानना चाहिए। अब नेक्स्ट पेज 36 पेज पर आते हैं। अब ये जो बंध है ना उसमें प्रकृति बंध में ही लगाना है, सादि अनादि ध्रुव और अध्रुव बंध प्ररूपना। सादि यानी जो अनादि से बनते हैं उसको अनादि कहेंगे, अब रुकेंगे और फिर बंध चालू होगा तो उसको सादि कहेंगे। तो जो सादि अनादि ध्रुव अध्रुव बंध है उसका ओग तथा आदेश से दो प्रकार का निर्देश है। पहले ओग से बताएंगे, सादि बंध का यह अर्थपद है कि एक कर्म अर्थात आयु कर्म का, छह कर्मों का अर्थात वेदिनियों को छोड़कर शेष ज्ञानावरण दर्शन मोहनीय नाम गोत्र तथा अंतराय रूप छह कर्मों का बंध विच्छिन्न होने के पश्चात पुनः बंध होना सादि बंध है। यह मूल प्रकृतियों पर घटित कर रहे हैं। जैसे आयु का तो बंध तो कभी कभी होता है ना, तो वो तो हमेशा जो उसका तो शादी कहेंगे, उसको में तो अनादि वाला होगा ही नहीं। और छह कर्मों का जो है कौन कौन से, जिनका बंध रुकता है दसवें में छह कर्म सॉरी वहां तो बंध रहे थे ना छह कर्म, ज्ञान और दर्शन मोहनीय नाम गोत्र अंतराय, ग्यारहवें में नहीं बंध रहे और फिर दसवें में आए तो बंध नहीं लगे, तो उसको क्या कहेंगे, सादी। हाँ। वेदनीय में तो क्योंकि हम मूल प्रकृति लेना है ना, वेदनीय तो अनादि का बंध हो रहा था, रुक गया और फिर नीचे आया ऐसा नहीं होगा, तो उसको अनादि का कहेंगे। अभी उत्तर प्रकृति की बात नहीं ली है, हाँ, तो सादी हो जाएगा। विशेषार्थ, आयु का निरंतर बंद नहीं होता है, हमेशा बंद नहीं होता, निरंतर यानी ऐसा नहीं रहेगा ना, हमेशा नहीं बंद होता, आयु का बंद होकर रुक जाता है, पुनः होता है, अतएव इसको सादी बंद कहा है। सदा बंद न होने के कारण अध्रुव भी है। आयु के विषय में गोमर्सार कर्मकांड में लिखा है कि भुज्यमान आयु के उत्कृष्ट 6 मास अवशेष रहने पर देव तथा नारकी मनुष्यायु व तिर्यंचायु का बंध करते हैं। भोग भूमि या जीव 6 मास अवशेष रहने पर देवायु का ही बंध करते हैं। हाँ, वहां पर भी है ना भोग भूमि में। पहले देखो, जीव कांड और कर्मकांड में कहीं एक जगह 9 मास लिखा है और दूसरी जगह 6 मास लिखा है, परंतु उसे साधारण 6 मास ही उसको लिया है, यानी जो असंख्यात वर्षायुष के जीव होते हैं वो 6 मास अवशेष भोग भूमि के लिए भी और देवनारकी के लिए भी।
हमने भोग भूमि का
9 मास, परंतु वहां पर भी 2 प्रकार की कथन है, क्योंकि हमने जीव कांड में 9 मास पहले पढ़ा था, बाद में कर्मकांड में वो भी 6 मास वहां पर भी आया था, इसलिए वो अभी करना नियोग में भी वो 6 माह ही करना है। देखो क्या कहते, ऊपर हम पढ़ रहे थे 36 पेज पर। हाँ, भोग भूमि का भी 6 मास वो तो देवायु का ही बंद करते हैं। मनुष्य तथा चिरियंश भुज्यमान आयु का 1/3 भाग अवशेष रहने पर चारों आयु का बंद करते, चारों ने चारों में से किसी का। तेज कायिक तथा वात कायिक जीव यानी वायु कायिक जीव एवं सप्तम पृथ्वी के नारके तिर्यंच आयु को ही बांधते है ना। ये बात कौन सी प्रकृति बांधते उसकी, क्योंकि तेज कायिक तो मनुष्य आयु कभी बांध ही नहीं सकते ना, मनुष्य गति को बांधते हैं, उल्टा है उसकी उद्वेलना कर लेते गतियों की। और सातवीं पृथ्वी के नारके विभले वो समय दृष्टि रहा बीच में, फिर भी अंत में जाकर मिथ्यात्व में जाकर तिर्यंच आयु ही बांधते। एकेंद्रिय व विकलेंद्रिय मनुष्यायु व तिर्यंचायु का ही बंद करते, वो नरकायु देवायु नहीं बांध सकते। एक जीव एक भव में एक ही आयु का बंद करता है, वह भी योग्य काल में 8 बार ही बांधता है, यानी मैक्सिमम 8 बार अपकर्ष काल, उनमें भी होते 8 होते, पर वो 6 महीने में 8 अपकर्ष काल होते हैं। देव और नारकियों के 6 महीने में 8 होते हैं, और मनुष्यों तिर्यंचों के तो 1/3 है तभी बाकी रहा था, वो 1/3 का 1/3 1/3 का 1/3 ऐसे 8 बार हो सकता है। 8 बार नहीं बांधे तो लास्ट में एक अंतर्मुहूर्त पहले तो आयु बंद करके समाप्त करता है, बाद में अंतर्मुहूर्त के बाद मरता है। असंक्षेपद जो बाद में जो काल बचता है वहां सर्वत्र 1/3 भाग शेष रहने पर बांधता है, 8 बार ही बांधता है ना, मैक्सिमम 8 ही बार आते हैं उसके अपकर्ष काल। 8 अपकर्ष के कालों में पहली बार के बिना द्वितीयादिक बार में पूर्व में जो आयु बांधी थी उसकी स्थिति की वृद्धि हानि व अवस्थिति होती है। क्या कहना चाहते हैं, जब पहली बार बांधा है तो जो कुछ यथायोग्य बांधेगा, आयु तो नक्की हो गई अभी, अब दूसरी बार तीसरी बार तो वही आयु बांधेगी, परंतु उसकी स्थिति हेनाधिक बन सकती है, यानी उस स्थिति अधिक भी बांध सकता है, कम स्थिति भी बांध सकता है और उतनी की उतनी भी बांध सकता है। पहली बार आयु की जो स्थिति बांधी थी उसके पश्चात यदि दूसरी बार तीसरी बार इत्यादि बंध योग्य काल में पहली स्थिति से यदि अधिक आयु का बंध हुआ तो पीछे जो अधिक स्थिति बंधी उसकी प्रधानता जाननी चाहिए। मान लेते ना, कभी पहले किसी ने 1 सागर की आयु बांधी और बाद में जब अपकर्ष आया तो 3 सागर की बांधी तो 3 सागर की कहलाएगी, यानी उसका 3 सागर की तो निषेक रचना हो ही जाएगी, पूर्व में बंधे हुए भी कुछ ऊपर चढ़ेंगे, बंध के साथ उत्कर्षण उनका भी होगा, यानी उनकी 3 सागर की आयु वो भोगेगी। नहीं जब अगर पहले ज्यादा बांधी है और दूसरे बार कम बांधी तो ज्यादा ऑलरेडी बांधी है ना, हाँ ज्यादा गिनेंगे। हाँ, अगर वो घातायुष्क होकर घटती है तो ही वो कम हो जाती है, नहीं तो केवल नेक्स्ट टाइम कम बांधी तो कम हो गया ऐसा नहीं होगा। ये कोई है, यदि पूर्वबद्ध स्थिति की अपेक्षा न्यून स्थिति बंधी तो पहली बंधी अधिक स्थिति की प्रधानता जानी है ना। यहां हमने निकाल दिया आयु के बंध को करते हुए लिखा था ना, वो निकाल देना। इसमें ऐसा लिखना जीव के परिणामों के कारण आयु का अपवर्तन, यानी कौन सी आयु का, बद्यमान आयु का, ये बद्यमान शब्द जोड़ो उसमें। यानी हमने पहले चार शब्द निकाल दिए कि आयु के बंध को करते हुए नहीं, क्योंकि ये जो घटना होता है तो आयु बंद हो चुकी और उसके बाद अभी जो मरण तक का काल है वहां तक परिणामों के वश वो आयु घट भी सकती है, जिसको हम घातायुष्क कहेंगे। तो आयु बंध के काल में ही वो घटना चाहिए ऐसी जरूरत नहीं है। तो जीव के परिणामों के कारण आयु का अपवर्तन है, बद्यमान आयु का अपवर्तन अर्थात घटना भी होता है, इसे अपवर्तन घात कहते हैं, जिसको हम घातायुष्क भी कहते हैं।
ना
ये बाद में कभी भी, जैसे श्रेणी के राजा की बात ही आपको याद करना, उन्होंने पहले तो सातवें नरक की तृतीय सागर की बांधी थी, तो बांध के चौक हो गया था, वो तो अंतर्मूर्त ही बनती है। आप ही बताओ दूसरी बार जब उनको कब आया, समय दर्शन होने के बाद, समय दर्शन होने के बाद अरे गति भी नहीं बांधेगी, नरकायु बांधने का सवाल नहीं है। तो उनके सम्यक रूप परिणाम के कारण ही बंधी हुई नरकायु घटकर कम हो गई। घटने के लिए दोबारा आयु बंध की कंडीशन नहीं है, बढ़ने के लिए है। हाँ जीव के परिणाम जो है ना, इन बिटवीन जो परिणाम होते हैं उसके कारण ये, परंतु बढ़ेगी नहीं कभी, परिणाम के वश आयु बढ़ेगी नहीं। जैसे किसी ने कि देवायु बांध ली, मान लेते कि 10,000 की बांध ली और अभी परिणाम अच्छे हो गए, तो ऐसे आयु नहीं बढ़ेगी। दोबारा आयु का बंध होगा और अधिक बांधेगा तो ही अधिक हो सकती है, पर घटने के लिए ऐसी कंडीशन नहीं है। वो परिणाम जो संकलेश रूप परिणाम के कारण घट सकती है, घटेगी ही ऐसा नहीं है, घट सकती है। जैसे द्वीपायन मुंडराज की बात आती है ना, तृतीय सागर की बांधी थी और परिणाम ऐसे खोटे हो गए कि 10,000 वर्ष की रहेगी, वो अग्नि कुमार देव में चले गए, इस तरह से आता है शास्त्र में वर्णन। देखो ये नहीं, ये बंधी हुई इसी भव में नेक्स्ट बंधी हुई आयु का, यानी बद्यमान आयु का घटना, उसको घातायुष्क कहते हैं, अपवर्तन घात कहते हैं। और जो हमारी भुज्यमान आयु घटती है ना, उसको कदली घात कहते हैं, है ना, यही लिखा है नीचे। कदली घात होना ये फिक्स था, पर आयु तो अधिक बांध के आया था कि नहीं, हाँ यही बात है, यही कहते उदय प्राप्त आयु है ना भुज्यमान आयु के अपवर्तन को कदली घात कहते हैं। यह भी ज्ञातव्य है कि तीसरा भाग अवशेष रहने पर आयु का, आगामी आयु का बंध होगा ही, इस प्रकार का एकांत नियम नहीं है। उस काल में आयु के बंध होने की योग्यता होती है, इसीलिए उसको अपकर्ष काल कहते हैं। आयु का बंध होगा भी या नहीं भी होगा, यह 8 बार ये बंध योग्य काल है, आयु के बंध योग्य कालों की बात है, उसको अपकर्ष काल कहते हैं। 8वीं बार नहीं होगा तो यह अंत में जाके आयु का बंध हो जाए, वहां आयु का बंध होवे तथा न भी होवे, ये गोमर्सार कर्मकांड बड़ी टीका उसमें ये बात आई थी। उपशांत कषाय गुणस्थान में जब कोई जीव पहुंचता है, ये आयु के बंध की बात हो गई, हाँ, तब ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनीय नाम गोत्र तथा अंतराय का बंध रुक जाता है, वहां केवल सातावेदनीय का ही बंध होता है। जब वह जीव गिरकर पुनः सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान में आता है तब ज्ञानावरणादि का बंध पुनः प्रारंभ हो जाता है। देखो मोहनीय का बंध तो 10वें में नहीं था, मोहनीय का बंध तो 9वें तक था, बाकी का 10वें तक था। 10वें में 6 कर्मों का बंध था, मोहनीय का बंध तो 9वें में ही रुक गया था। 11वें में गया, 11वें से 10वें में तो 6 का शुरू हुआ, 10वें से 9वें में आए तो मोहनी का भी शुरू हुआ, तो उसको क्या कहेंगे, सादी बंध कहेंगे। इस कारण ज्ञानावरणादि का सादी बंध कहा गया है। ऐसा भी होगा ना, कोई दसवें में गया और वहीं पर मरकर देव में गया, तो उसका भी मोहिनिका चालू हो गया तो शादी कहेंगे हम। इस प्रकार मूल कर्म प्रकृति के अर्थ पद भंग यानी प्रयोजनभूत पदों के भंग करना चाहिए। इस अर्थ पद से इस बात को लक्ष्य में रखते हुए अर्थात ओघ तथा आदेश द्वारा दो प्रकार निर्देश करते हैं। ओग का अर्थ सामान्य तथा आदेश का अर्थ विशेष है। एवं मूल पगदी अठ पद भंगो कादवो, यानी वो सर्व नो सर्व जो हुआ, उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट हुआ, जघन्य अजघन्य हुआ, ध्रुव ध्रुव हुआ, सादे अनादि ध्रुव ध्रुव है ना, तो इसको अर्थपद कहते हैं। ये हमने कादवाएं करनी चाहिए, ये भंग हो गए ना। कौन कौन से हुए देखो, सर्व नो सर्व हुए, उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट हुए, जघन्य अजघन्य हुए, सादी अनादि भी हुए, ध्रुव ध्रुव भी हुए, ये सब में लगाने चाहिए, उन्होंने लगा के बताए थे। अब उसमें ओग में भी बताना और आदेश में भी बताना है। तो ओग का अर्थ सामान्य, आदेश का अर्थ विशेष है। ओग से पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय जुगुप्सा, ये कैसे सब ध्रुवबंदी प्रकृतियां ले रहे हैं आपको या ख्याल में आए तो, तेजस कारमाण, वर्णादि चार, अगुरु लघु उपघात और निर्माण और अंतराय के, क्या सादी अनादि ध्रुव अध्रुव ये चारों बंध होते हैं? तो कहते सादी अनादि ध्रुव अध्रुव बंध होते हैं, क्योंकि ज्ञानावरण दर्शनावरण में वो देखे ना हमने, ज्ञानावरण दर्शनावरण का तो हाँ ये तो ध्रुव बंध, ये तो ध्रुवबंदी है, परंतु फिर भी ये तो ऐसे तो ध्रुवबंदी है, तो ध्रुव बंध भी सबको होगा ना, अनादि से तो बंध ही रहे। ये कौन सी लिए है, अनादि से बंधने वाली, तो उसमें अनादि भी है और एक बार बंध रुक कर फिर शुरू होता है तो सादी भी है, क्योंकि ग्यारहवें में से फिर लौट से सभी प्रकृतियों का सादी भी हो जाएगा, तो अनादि भी और साधु भी है। ध्रुव किसके लिए, ये ध्रुवबंधी प्रकृतियां है, अभव्यों के लिए ध्रुव ही है, और जो इनके बंध विच्छित करेगा उसके लिए अध्रुव है। इसलिए इन प्रकृतियों में सादी भी और अनादि भी है। ये कौन सी लिए, सारी ध्रुवबंदी ली। ध्रुवबंदी कितनी होती है मालूम है? सैतालीस। कैसे गिनना, ज्ञानावरण पांच, दर्शनावरण की नौ, अंतराय की पांच, ये उन्नीस हो गए, और मोहनी के भी मिथ्या तो सोलह कषाय भय जुगुप्सा, वो भी उन्नीस उन्नीस अड़तीस हो गए। अब नौ है वो उतना नाम कर्म की है, तेजस है कारमान है, वर्णादि चार है, अगुरु लघु उपघात और निर्माण है, ये नौ हो गए। ये सब 47 जो है उसमें सादी भी है, अच्छा लिखना है आपको, ध्रुवबंदी प्रकृतियां। देखो ज्ञानावरण की पांच, दर्शनावरण, ये सब लिखे उसमें, यानी हम कैसे गिनेंगे, मैंने आपको एक ट्रिक बताई, 19 19 और 9 इस तरह से, वो सब वहां लिखी वही है उस। अब देखो पूछते, हाँ अब साता 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 तो सादी होगी ना, वो तो सादी होगी, क्योंकि वो तो पलट पलट कर बनती रहती है, और पलट पलट कर बनती तो अध्रुव ही होगी, सादी और अध्रुव ही होगा, किसमें किसमें, साता साता में। और यहाँ इसे लेना है, ये प्रतिपक्षी या जो बनती, यानी इसको जो ध्रुवबंदी छोड़कर बाकी लेना है इसमें। देखो कैसे साता साता, भय जुगुप्सा बिना सात नौ कषाय, सात नौ कषाय ने तीन वेद में से कोई एक बंधेगी और कोई एक युगल बंधेगा, चार आयु, चार गति, पांच जाति, उसमें से कोई ना कोई बनती है ना, तीन शरीर, छह संस्थान, तीन अंगोपांग, छह सहनन, चार आनुपूर्वी, परघात उच्छ्वास। देखो ये प्रतिपक्षी नहीं है, फिर भी वो पर्याप्त नाम कर्म के साथ बंधेगी, अपर्याप्त के साथ नहीं बंधेगी। आतप उद्योत वो भी ऑप्शनल है, ऑप्शनल बनती है वो। विहाय गति, दो विहाय गति, ये भी एक इंद्रिय के साथ नहीं बंधेगी, और बाद में बनती है तो प्रशस्त प्रशस्त, वो तो इसलिए वो तो ऑप्शनल है। त्रसादी दस युगल, त्रस स्थावर स्मादर सूक्ष्म वो सब, उसमें भी प्रतिपक्ष वाली है तो वो भी अलट पलट कर बनती है, वो भी सादी और अध्रुव है। तीर्थंकर अनादि से तो नहीं बनती थी, सादी हुआ और अध्रुव है क्योंकि मिट जाता है बंध विच्छित होने पर। निज गोत्र उच्च गोत्र, इनके क्या सादी आदि चार बंध होते हैं, तो कहते सादी तथा अध्रुव होते हैं, वो ऊपर ध्रुव बंधित है उसमें चार प्रकार बताए और इनमें सादी और अध्रुव बताए, ऐसा अचक्षु दर्शन में जानना चाहिए। अच्छा अच्छा, अचक्षु दर्शन में ने मार्गणा में अचक्षु दर्शन की मार्गणा जो है ना, वो बारहवें गुण स्थान पर्यंत अचक्षु दर्शन तो हर एक के पाया जाता है, तो अचक्षु दर्शनावरण जीव जो है उनमें यही भंग पाया जाएगा। बहुव्य सिद्धिकों में ध्रुव भंग नहीं है, क्या कहा, बहुव्य जीवों में वो ध्रुव वाला बंध नहीं होगा क्योंकि वो तो उसका बंध को विच्छित करके मोक्ष जाएंगे, इसलिए उसमें ध्रुव वाला भंग नहीं स्वीकार है। अनाहारक पर्यंत ऐसा जानना चाहिए, इन्हें मार्गणाओं में पहले ओग में बताया, जैसा ओग का वर्णन है वैसा ही अचक्षु दर्शन में है ऐसा कहना चाहिए। अब बंध स्वामित्व विचय प्ररूपण, देखो देखो, भव्य सिद्धि कहने वो मोक्ष जाने वाले हैं, इन्हें बंध का अभाव करके, जैसे इवन साता वेदनीय को भी हमने क्या देखा, ग्यारहवें में से नीचे आता है, परंतु ये उसमें तो वो ध्रुव भी है और अध्रुव भी है, हमें जनरल में क्या लिए, ध्रुव भी अध्रुव, ध्रुव किसके लिए बंद होता है, अभव्यों के लिए, इसलिए उसमें ध्रुव भी लिया अध्रुव भी लिया, ये ओग में इन जनरल में, परंतु तो भव्यों में क्या इसे लेना, वो नियम से बंध का अभाव करके मोक्ष जाएंगे तो उसमें वो ध्रुव वाला भंग नहीं रखना, अध्रुव का रखना। ध्रुव ने जो कायम बंधता ही रहता है उसको ध्रुव बंध कहेंगे, जैसे पांच ज्ञानावरण का बंध अभव्यों के लिए क्या होगा, ध्रुव ही होगा, इस तरह से लेना। हाँ, अभी आगे बढ़ते हैं। ये प्रकृतियों की जो प्ररूपणा है ना, बहुत महत्व की है, क्योंकि आगे स्थिति और अनुभाग को देखते हुए बारंबार कहें, जैसे प्रकृति बंध के अनुसार समझना, कौन सी प्रकृति कितने काल तक बनती है, उसका अंतर कितना होता है, ये सब बातें इसमें लगाएंगे अभी हम, पहले कौन बांधता है, क्या बांधता है, उसकी चर्चा चलेगी अभी। तो यह 37 नंबर पेज पर बंध स्वामित्व विचय प्ररूपणा, ये नाम कुछ याद आता है, पढ़े कहाँ पढ़े, ये पूरी आठवीं पुस्तक बंध स्वामित्व विषय वाली है क्योंकि आगे जब हमारा त्रुटितांश आने वाला है तब ये आठवीं पुस्तक निकाल के हम देखने वाले हैं, बंध स्वामित्व विषय जो ओरिजिनल है। यहाँ भी उन्होंने त्रुटितांश को डिराइव किया है, परंतु यहाँ उन्होंने क्या है, कर्मकांड की भाषा में बताया और यहाँ की भाषा कुछ अलग पद्धति से डिराइव किया, हम दोनों पद्धति से पढ़ेंगे, पक्का हो जाएगा ना अपना। हाँ, अभी तो नहीं, मेरे ख्याल से 49 पेज से वो तो, वो हमने त्रुटित अंश जो किया है ना वो उसको लाना पड़ेगा। हाँ कल के लिए नहीं लगेगा, शायद परसों लगेगा। 49 पेज पर ये त्रुटित अंश है। अभी जरा चालू करते, फिर कल से शुरू करेंगे। बंध स्वामित्व विषय प्ररूपणा। अभी तो हमने कौन कौन से प्रकृति बंध योग्य वो तो देखी, अब उसका बंध स्वामित्व ने बांधने वाले जीव कौन है उसकी चर्चा चलेगी। जो बंध स्वामित्व विषय है उसका ओग तथा आदेश से दो प्रकार निर्देश करते हैं। ये हमें बहुत विषय ने उसकी चर्चा है ना, वो ध्यान में भी आता है ना, आज्ञा विषय, विपाक विषय, धर्म ध्यान। ओग से मिथ्या दृष्टि से लेकर अयोग केवली पर्यंत, ये नीचे फुटनोट किसके लिए लिया है, दो नंबर, एत्तो इमेसिम चौदह सन्नम जीव समानम मग्न छयाए तथ्य इमानी चौदह सौ चेवठानी नायोगानी भवंती जीवा समस्यंते येषु इति जीव समास है। यानी जीव जिसमें होते हैं वो जीव समास है। तेषाम चतुर्दशानाम जीव समासानाम चतुर्दश गुणस्थानानाम इति अर्थः। यानी 14 जीव समास है और उसके 14 गुणस्थान वगैरह होते हैं। ऊपर देखो, ओग से मिथ्या दृष्टि से लेकर, मिथ्या दृष्टि ने गुणस्थान पहला गुणस्थान, अयोग केवली पर्यंत 14 जीव समास यानी गुणस्थान होते हैं। गुणस्थानों को भी जीव समास कहने की पद्धति है। इन 14 जीव समासों गुणस्थानों में ऊपर तो केवल उसको जीव समास ही कहा है, 14 से जीव समासा नादववाणी, परंतु यहाँ तो जीव समास कहने से कोई वो सूक्ष्म बाधा नहीं समझे, इसलिए गुणस्थान की बात की। इन 14 जीव समासों गुणस्थानों में प्रकृति बंध की विच्छित्ति कहनी चाहिए। आपको याद है विच्छित्ति? विच्छित्ति कहनी चाहिए तो हर एक की जो बंध विच्छित्ति है उसको हमको याद होना चाहिए। कल हम पूछेंगे, उन्होंने यहाँ टेबल दिया है हर एक गुणस्थान की कौन सी विच्छित्ति है, आप भी देखकर आना। याद किया हो फिर, अभी तो यही काम आने वाला है वो पूरी पुस्तक में, क्योंकि उसके कितना अंत, किसी प्रकृति का बंध विच्छित्ति होती है तो उसका अंतर कितना पड़ेगा, तो हमें वो गुणस्थान का अंतर भी समझना चाहिए। जैसे कोई मिथ्यात्व में बंधने वाली प्रकृति है, उसका काल कितना होगा, तो मिथ्यात्व में बना रहेगा तो मिथ्यात्व में उसका काल सदा काल होगा, उसका अंतर कब होगा, सम्यक्त्व में प्राप्त करने पर उसका अंतर होगा। तो ये सब बातें अभी हमको नक्की करनी। आज हम यही रुकते हैं, कल पेज नंबर 38 से शुरू करेंगे। चावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक नम सदा देत हो। ब्रह्मा।